ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಜ್ ಬಹುತ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೇ ಔರ್ ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕುರ್ ಕಿ ಪ್ರಭಾವ ದಿವಸ ಹೇ. ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಬಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜಾ ಲೇಕಿನ್ ವೈಷ್ಣವ ಕೆ ಲಿಯೆ ಈ ಜೊ ಬಸಂತ ಪೂಜಾ ಹೇ ಕುಛ ಮಹತ್ವ ನಹೀ ಹೇ, ಪರಂತು ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಆಗಮನ ಕು ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೈಷ್ಣವ ಲೋಕ ಬಸಂತ ಕು ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಬಾಸಂತಿಕ್ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಬಸಂತ ಋತು ಕಿ ಶುಭ ಆಗಮನ್ ಹೇ. ತೊ ಭಕ್ತೋ ಕು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಲೀಲಾ ಕು ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ ಅವಸರ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮೇ ಪಂಚಮಿ ಕೆ ದಿನ ಆಜ್ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾ ಔರ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಕಿ ಆಜ್ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹೇ. ಇಸ್ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಕೆ ಬಾದ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಜೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸೋಪದಂತಿಕಂ. ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ವೈಷ್ಣವಾಂಸ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಂ ನಿತ್ಯಂ ತಂ ಸಾಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನಿತಂ ಸನ್. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ. ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮದೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಶ್ಚತ್ಯದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಕದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಭಜನ್ ಮೇ ಕಹತೆ ಹೇ, ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯುಗ ಕಿ ಜೀವ ಪರ ದಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಸೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೆ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವಯಂ ಪಾರ್ಷದೋ ಕೋ ಭಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಲಾಯೆ. ಸ್ವ ಪಾರ್ಷದ ಸ್ವಯಂ ಧಾಮ ಸಹ ಬದಲೆ ಅಪ್ನೆ ಧಾಮ ಅಪ್ನೆ ನಾಮ ಔರ್ ಪರಿಕರೋ ಕೋ ಭಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಲಾಯೆ. ಔರ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ जो महान उद्देश्य थी कि सभी जीवों को भक्ति सिखाना और ये भक्ति के द्वारा इस संसार के प्रति विमुखता व विरक्ति को प्राप्त करना। इसलिए अपने पार्षदों के द्वारा विशेष करके उन्होंने वैराग्य विद्या भक्ति के द्वारा कैसे वैराग्य को प्राप्त किया जाए उसे शिक्षा दी। तो आज हम पहले से प्रारंभ करेंगे विष्णु प्रिया देवी की प्राकट्य दिन, क्योंकि भगवान और भगवान की जो शक्ति है अभिन्न है। तो जितने भी कुछ भगवान की विस्तार है स्वकीय विस्तार वो उनके अंतर्गत शक्ति से ही होती है। तो विष्णु प्रिया देवी भगवान की जो अंतरंग शक्ति की प्राकृति है, भगवान के तीन अंतरंग शक्तियां होती हैं, जो फीमेल रूप में प्रकट होता है वो है श्री भू और लीला। श्री का मतलब है सौंदर्यता और ऐश्वर्य, तो जिसमें लक्ष्मियां हैं वहां रुक्मिणी है, और भू शक्ति का विस्तार है दिशा धाम, और इस धाम को मेंटेन करना। पोषण करना ये भू शक्ति की कार्य है। और तीसरा शक्ति है लीला। तो भगवान की जहां जहां लीला होती है तो लीला के विस्तार, लीला को परिकरों को आनंद प्रदान करना, ये है लीला शक्ति की कार्य है। तो और इसके और बहुत सारी कार्य हैं, मतलब संक्षेप में इतना ही समझना चाहिए। भगवान जब लीला करते हैं तो लीला के साथ साथ ये तीनों शक्ति भी आते हैं, श्री भू और इला बाल लीला उसको कहते हैं। तो जो भू शक्ति के प्राकट्य हैं वो है कौन, विष्णु प्रिया, और श्री शक्ति की प्राकट्य है लक्ष्मी प्रिया। तो बहुत सारी वैष्णव के मन में भी प्रश्न उठता है, जैसे हम गौड़िया वैष्णव बा रूपानुग है चैतन्य महाप्रभु अनुजाई है, तो हम लोग शक्ति के साथ शक्तिमान का पूजा करना चाहिए, जैसे राधारानी के साथ हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, सीता जी के साथ राम जी की पूजा करते हैं, वा लक्ष्मी के साथ नारायणी की पूजा करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ विष्णु प्रिया पर लक्ष्मी प्रिया पर क्यों पूजा नहीं करते हैं? आप लोगों के मन में है ना इस प्रकार जिज्ञासा है? तो इस संबंध में हमारे गौड़िया आचार्य लोग ने कुछ सिद्धांत दिए हैं कि वास्तविक जो लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया है तो राधारानी के समान पास सीता जी के समान नहीं है। तो गौरव गणदेश दीपिका में विष्णु प्रिया के बारे में बताया गया है कि वास्तविक वो भू शक्ति का विस्तार है, और जो पहले जत कन्या भू स्वरूपिणी सत्रा जीतं नृपं पुरा, जो पहले सत्राजीत की पुत्री कौन, सत्यभामा, वही सत्यभामा तो महाप्रभु की लीला में किस रूप में प्रकट हुए, विष्णु प्रिया के रूप में। श्री सनातन मिश्र अयम पुरा, जो पहले सत्राजीत थे तो वही सनातन मिश्र के रूप में प्रकट हुए। ये सनातन मिश्र कौन है, विष्णु प्रिया की पिताजी। विष्णु प्रिया जगत माता है, जगत कन्या भूस्वरूपणी, जगत माता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण सत्यभाम को लेकर के एक कार्य साधन किए थे, वो क्या है, भौमासुर की वध की, जब पृथ्वी की भार बना हुआ था तो भगवान सत्यभाम के आदेश से अपने पुत्रों को संहार किए, भूभार को हरण किए। उन्होंने बहुत सारी राजाओं को उन्होंने बंदी बनाया था। तो चैतन्य चंद्रोदय में भी कहा गया है, भूव अंश रूपं अपरं च विष्णु प्रियते वित्तं परिणीय कांतां वैराग्य शिक्षां प्रकटीकरिष्यन् हारयति अथेनां स नवां वेनम्। तो पृथ्वी की जो भार है उसको कलिजुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी इसको काम करने के लिए, उसको उतारने के लिए विष्णुप्रिया को कांता रूप में ग्रहण किए, जैसे सत्यभामा की सहायता से वो होमासुर को संहार करके पृथ्वी के भार उतारे थे, तो उसी प्रकार वही विष्णुप्रिया को साथ में लेकर के आए। और किस प्रकार भूभार को हरण किए, वैराग्य की शिक्षा देने के लिए। तो कलयुग में जो आसक्ति है, राग है, ये भी एक भार है, क्योंकि सबसे बड़ा भार है क्या है, काम। काम शक्ति के भार आसक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए है तो विष्णु प्रिया वास्तविक किस प्रकार वैराग्य आचरण किए, भक्ति की। मैंने चैतन्य महाप्रभु उनको स्वप्न में आदेश दी कि जहां पर मेरी माता सची ने मुझे स्तनपान कराए थे, तो वही नीम की लकड़ी से एक विग्रह बना, और यही सपन भी बंसी वदन को भी दिए, जो बंसी वदन जी उन्होंने फिर कारपेंटर को बुला के वो चैतन्य महाप्रभु की विग्रह बनाए। और ये विग्रह अभी कहां है, धामेश्वर महादेव के नाम पर, कहां पर है, नवदीप में है, पुड़ा माँ दर्शन करके हम आते हैं तो दर्शन करते। तो ये जो विष्णु प्रिया मतलब माताओं को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, यदि पति इस प्रकार कृष्ण भक्ति करने के लिए व कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करता है, तो पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखाए वैराग्य विद्या, निज भक्ति योग, तो उसी प्रकार अपनी पत्नी के द्वारा भी ये भी सिखाए कि किस प्रकार पत्नी को भी धर्म निभाना चाहिए। तो विष्णु प्रिया क्या करती ना, जितनी माला करती तो उतनी चावल इकट्ठा करती, और सूर्यास्त होने के बाद जितना वो चावल इकट्ठा करती थी उसको वो पका करके महाप्रभु को भोग लगाती और उतना ही वो सेवन करती। तो भगवान की प्रीति इसी प्रकार प्राप्त होती है ना, भगवान के प्रति किसी का अनुरक्ति है इसको पता चलेगा वो कितना ऑस्टेरिटी तपस्या को जोड़ता है। भक्ति आने पर ये अपने आप विरक्ति वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये जो विष्णु प्रिया, इसलिए जैसे हम रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते गौड़ीय वैष्णव के लोग, है ना, हालांकि रुक्मणी द्वारकाधीश द्वारका में ये हो, लेकिन हमारे रस के अनुसार जो परकिया रस है तो उसी के अनुसार नहीं है, क्योंकि भगवान रुक्मणी व सत्यभामा के साथ सुखीय लीला किए, गोपियों के साथ परकिया। तो इसलिए तो गौड़ी आचार्य लोग ये मत को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया के बदले उन्होंने गौर और नित्यानंद, गौरंग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु की पूजा करते हैं जो कृष्ण और बलराम। तो बहुत सारी चीजें हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गया से पिंडदान करने के पश्चात जय श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है ना, हम सभी के विषय में थोड़ा थोड़ा आज चर्चा कर पाएंगे, और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी वास्तविक चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा का एक साकार स्वरूप है वैराग्य विद्या का, तो इस विषय में हम थोड़ा सा ज्यादा श्रवण कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया को दूसरी बार हम विवाह किए, पहले बार लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह हुई थी। और चैतन्य महाप्रभु और विष्णु प्रिया का लगभग डिफरेंस कितना एज की, 8 साल की। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य कब हुआ था, 1486 और विष्णु प्रिया का 94, तो 8 साल के डिफरेंस। तो किस प्रकार विवाह हुआ ये सब चैतन्य भागवतम में डिटेल वर्णन है ना। वास्तविक माता सची की है ना, उनकी सहायता करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ दूसरी बार विवाह किए। बहुत लोग कहते हैं देखो तो यदि वो भगवान होते हैं तो फिर विवाह किए, चलो कोई बात नहीं, दूसरे विवाह प्रथा है जवान थे, फिर इसको छोड़ के क्यों चल गए। तो महाप्रभु की संन्यास लेना, बगरो त्याग करना, तो साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की द्वारा आचरित और प्रचारित जो भक्ति है इसको यदि हम अभ्यास करें तो इस मर्मों को हम समझ पाएंगे। तो आज रघुनंदन दास ठाकुर की आविर्भाव है। तो ये रघुनंदन ठाकुर भगवान की बहुत प्रेमी थे चैतन्य महाप्रभु की, और ये किसकी पुत्र है, मुकुंद दास। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी किसी एरिया में जो भक्त होते हैं तो साथ में आपस में बहुत प्रेम संबंध रखते हैं, और ये भी होना चाहिए, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये जो खंडवासी जो वैष्णव होते हैं तो रथ यात्रा के समय तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो 4 महीना चैतन्य महाप्रभु के साथ रुकते हैं, और वो रस्सी लेके जाते हैं रथ यात्रा में, जगन्नाथ जी के जो रथ है उसको खींचने के लिए रस्सी लेके जाते हैं खंडवा से। तो सुलोचन, रघुनंदन, मुकुंद और वासुदेव है ना, 5 मुख्य पार्षद है खंडवा से। तो ये मुकुंद दास के पुत्र थे, और भगवान श्री कृष्ण की जो चतुर्व्यूह होता है, पहला कौन है, वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, अनुरुद्ध। उनका जो तीसरा है इस व्यूह की, जो तीसरा पार्ट जो है वो है प्रद्युम्न, वही मुकुंद के रूप में गौरांग महाप्रभु लीला में प्रकट हुए। विभु तृतीय प्रद्युम्नम प्रिय नर्मः सख अभवत् चक्रे लीला सहायो ये राधा माधवयो व्रजे। और ये भी ब्रज लीला में प्रिय नर्म सखा है। और चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य की दोनों शक्ति का वो स्वरूप है, श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदन। तो ये रघुनंदन ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की प्रेम और अद्वैत आचार्य की शक्ति। अब देखिए अद्वैत आचार्य की क्या शक्ति था, उन्होंने तुलसी पत्ता और गंगा जल भगवान को अर्पित करके स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को इस धराधाम में प्रकट करवाया। ठीक उसी प्रकार ये जो रघुनंदन ठाकुर बहुत छोटे थे, 5-6 साल के थे, तो हम उनके पिताजी क्योंकि नरहरि ठाकुर के द्वारा उनके लालन पालन हुआ था, तो नरहरि ठाकुर को वो पिता मानते, परंतु मुकुंदा अपने पुत्र को क्या मानता, वो पिता मानता, मतलब मुकुंदन अपने पुत्र रघुनंदन को कहता था ये मेरी पिता हैं, क्योंकि उससे मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ। तो एक दिन की कथा है कि रघुनंदन हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की जो पुतला है गुड़िया, उससे वो खेला करते थे। तो और जब भी ठाकुर जी की पूजा होता, वो जाकर ध्यान पूर्वक वहां बैठ जाते और देखते भी थे। तो उनके मन में भी आग्रह होता था मैं भी ठाकुर जी को सजाऊं, मैं भी भोग लगाऊं। तो एक दिन मुकुंदा थोड़ा से अपने गांव छोड़कर के दूसरे कुछ जजमान के घर गए, तो वो ब्राह्मण थे। तो रघुनंदन को कहकर बेटा तुम ठाकुर जी को प्रतिदिन भोग लगा देना, मैं जब तक आपस ना आओ तब तक तुम ठाकुर जी को ध्यान रखना। तो कभी कभी भक्त लोग कुछ दूसरे प्रकार की भी वर्णन करते हैं कि एक खोआ की लड्डू बना हुआ था और उनके माँ ने उनको दिया कि जाओ तुम ठाकुर जी को भोग लगा दो। तो लड्डू भी लिए थे और बहुत प्रकार के मिष्ठान भी बना हुआ था। तो रघुनंदन जाकर के गोपीनाथ के पास पहुंच के, उनके आराध्य देव कौन थे, गोपीनाथ, और वहां पहुंच करके उन्होंने ठाकुर जी के पास बैठ के आसन लगा करके और पिताजी से देखे थे घंटी बजाते हैं, लेकिन वो मंत्र उच्चारण नहीं आता था कि पिताजी क्या मंत्र उच्चारण करते हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, छोटा बच्चा है। और ठाकुर जी के पास बैठ गए, घंटी बजाए और उनको बोले आओ और ये लड्डू खाओ बहुत मीठा है। तो देखे कि ठाकुर जी नहीं आ रहे तो थोड़ा दुखी हुए और कहने लगे देखो ठाकुर जी मैं इस लड्डू को झूठा नहीं किया हूं, मैं अच्छा ही रखा हूं, मतलब खाया नहीं इसको, तो मैं ऐसा कह रहा हूं मीठा है क्योंकि आप खाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, मेरी माँ बनाए हैं। तो फिर भी नहीं आए, तो फिर देखिए ठाकुर जी मुझसे रूठ गए हैं। तो ये फिर ही रोने लगे, गोपीनाथ आप खा लो हाँ, मुझे बच्चा समझ करके मेरे हाथ में नहीं खाओगे। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने पूरा जमीन पर लेट गए, रोने लगे। और फिर बाद में क्या देखे, सारे जितने आइटम सब मीठा के आइटम लिए थे सब खत्म और खाली प्लेट लेके आए। माँ ने पूछी अरे बेटा प्रसाद कहाँ है, कहता ठाकुर जी तो खा लिया सर। तो माँ ने बताया झूठा कहीं के तुम बच्चे को बांट करके बोल रहे हो हाँ, बताओ किसको दिए, नहीं मैया खा लिया जी गोपीनाथ, अच्छा खा ली। पहला दिन गया, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे माँ ने कह नहीं तुम कुछ शैतानी करते हो, हम इतना दिन भोग लगाते हैं ठाकुर जी इस भोग को देख करके फिर प्रसाद करके हमको आपस दे देते हैं, तुम कुछ शैतानी करते हो। तो एक दिन मुकुंद आपस आ गए और बताया कि इसे बच्चा ने लगाने के लिए जाता है और खाली प्लेट लेके आता है ना। तो फिर मुकुंद परीक्षा करने के लिए है ना, छीप करके देखे और फिर ठाकुर जी को समझ आ गया कि इनके पिताजी का तो इस प्रकार आस्था नहीं है, तो नहीं जा रहे। फिर रघुनंदन जब व्याकुल प्रार्थना किए तो गोपीनाथ स्वयं अपने हाथ में उठा करके लड्डू खा लिए। तो वही रघुनंदन के साथ जब हम मुकुंद जगन्नाथपुरी गए शिवानंद सेन की टोली में, तो आपस आते समय चैतन्य महाप्रभु सबसे मिलते थे और पूछते थे मुकुंद कैसे घर के हाल चाल ठीक है ना, बच्चे पत्नी सब कुछ ठीक है ना, कहते हाँ सब कुछ ठीक है। तो मुकुंद कहते हैं ये है रघुनंदन, तो महाप्रभु तो जानते थे कि इनके बेटा है। तो महाप्रभु पूछते हैं मुकुंद तुम बताओ तुम दोनों में से कौन बाप है कौन बेटा है। तो मुकुंद कहते हैं ये रघुनंदन मेरी बाप है और मैं इनके बेटा हूं। तो सभी वैष्णव कहते ये कैसे संबंध है बताएं, कहते असलियत में यही है शास्त्र के अनुसार जिससे हमको भक्ति मिलता है वही हमारे गुरुजन है और मैं रघुनंदन से कृष्ण भक्ति व कृष्ण प्रेम सीखा। तो इसलिए मरी पिता हैं। तो आज के दिन उनकी बसंत पंचमी के दिन तो उनकी जन्म हुआ था खंडा गांव। आप लोग सब जाना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु जहाँ जो पार्षदों की जहाँ जहाँ जन्म स्थान है तो वहाँ जाना चाहिए। हम पिछले साल गए थे गौर पूर्णिमा के बाद, बहुत अच्छा लगा वो। हम दो तीन बार शायद गए वहाँ पर बस लेकर। इसी प्रकार आज और एक वैष्णव है जो चैतन्य महाप्रभु के प्राण स्वरूप हैं, जिनके नाम ले लेकर की चैतन्य महाप्रभु रोते थे, पुंडरीक मेरी बापरी मेरी धनरे। लेकिन किसी वैष्णव को समझ में नहीं आता था ये कौन है वैष्णव जिनके नाम लेकर के महाप्रभु घंटों घंटों रोते हैं और उनके नाम को पुकारते। तो पहले वैष्णव तो समझते थे कि पुंडरीक तो भगवान कृष्ण के नाम है, तो शायद महाप्रभु भगवान के नाम लेकर के इसी प्रकार प्रलाप कर रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में बोलते थे, अरे पुंडरीक, अरे विद्यानिध मेरी बाप, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए प्यासा हूं, मुझे दर्शन दो, तो इस प्रकार पुकारते। तो एक दिन भक्त लोग सब जिज्ञासा किए, कौन है पुंडरीक। तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि, ये बड़े राजघराने के बेटा थे और वो स्वयं राधा रानी के पिता है। ये पुंडरीक विद्यानिधि का परिचय गौर गणदेश दीपिका में दिया गया है। वृषभानुतया ख्यातः पुरा जो ब्रज मंडले अधुना पुंडरीकाख्यम विद्यानिधि महाशयम। जो ब्रजमंडल में वृषभानु राजा के राम में जो विख्यात है वो अभी अधुना पुंडरीकाख्यम विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि के नाम में प्रसिद्ध है। स्वकीय भावम आस्वाद्य राधा विरह कातर, अपने स्व अभिष्ट व स्व भाव को आस्वादन करने के लिए राधारानी की भाव में आकर के जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे, विरह से कातर होकर की चैतन्य पुंडरीकाख्यम आहोये तातं अवदतम स्वयं। और जब आह्वान करते थे, अरे मेरी बाप, तात तात का मतलब है बाप, बेटा को भी बाप कहा जाता है स्नेह से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को बाप कहकर की संबोधन करते थे। प्रेमानिधि दया ख्याति गौर जस्मै ददो सुखी। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी भक्ति में इतनी सुखी हो जाते थे, तो स्वयं प्रेम में गदगद हो जाते थे और उनको कहते, अरे विद्यानिधि आप वास्तविक प्रेम निधि है, प्रेम के सागर हो। और ये जो विद्यानिधि वा पुंडरीक विद्यानिधि माधवेन्द्रस्य शिष्यत्वात् गौराब्जं स्वां सदा करोतु। तो गौरांग महाप्रभु हमेशा ही इस पुंडरीक विद्यानिधि को सम्मान करते थे। हालांकि बड़ा राज परिवार में उनकी जन्म हुआ था और जैसे कहते निधि, निधि का मतलब है संपत्ति, ये विद्या की निधि है जो चैतन्य महाप्रभु कहते ना, ये विद्या बधु जीवनम, ये नाम संकीर्तन जो दिए ये विद्या रूपी बधु के लिए ये जीवन स्वरूप है ये नाम संकीर्तन। और ये जो प्रेम रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र की मूल सागर आगार कौन है, ये है पुंडरीक। जैसे हम कहते ना क्या है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि। तो चैतन्य महाप्रभु की जो पार्षद में भी नौ निधि थे, कौन है, श्रीनिधि श्रीगर्भ कविरत्न सुधानिधि विद्यानिधि गुणनिधि रत्नबाहु आचार्य रत्न रत्नाकर। तो इनकी जो जन्म है बाणेन्द्र परिवार में, बाणेन्द्र जो ब्राह्मण होते हैं वो काय स्थित नहीं होते हैं, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं है, मिडिल कास्ट के होते हैं ब्राह्मण। तो उनकी पिताजी का नाम था बाणेश्वर ब्रह्मचारी और वो जमींदार राजा जैसे, जैसे करद राजा होते हैं कि राजा की अधीन में आने टैक्स कलेक्शन करना, वो जमींदार परिवार के थे। और उनकी मां का नाम था गंगा देवी। तो उनकी जो गांव है चंद्रपुर, चंद्र गांव कहते हैं, लेकिन उनकी पूर्वजों का गांव था नवदीप। और जो गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के जो पांच मुख्य पार्षद है ना, पंचतत्व कहते हैं, इसमें जो गदाधर है तो जो राधा रानी की उन्हें अवतार है, तो उनकी पिता थे माधव मिश्र। तो माधव मिश्र के साथ उनकी बहुत फ्रेंडशिप था, मित्रता थी, किसकी पुंडरी की विद्या में देखी। तो ये चंद्रगांव में मुकुंद और वासुदेव के भी, वासुदेव दत्त, मुकुंद दत्त, मुकुंद दत्त और एक दूसरे मुकुंद है ना, मुकुंद और नरहरि वो सरकार, वो अलग है लेकिन ये मुकुंद वासुदेव जिसको कहते ना वासु घोष आदि का। तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त इनकी भी जन्म उसे चंदगांव में हुआ था। लेकिन ये जो पुंडरी की विद्यानिधि हैं, ये बचपन से कृष्ण के प्रति बहुत अनुरक्त थे। तो इनकी जो भावावेश होता था कृष्ण की आवेश में, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते ये पुंडरी की भावावेश को समझ करके कहते थे, पुंडरी की अरे मरे बापरे मेरे मरो बंधुरे कबे तुमा देखी वो आर मरो बापरे, बार बार कहते थे मेरे पिता मेरे पिता, कब आओगे, कब मैं आपकी दर्शन करूंगा। तो मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त ये दोनों पुंडरी के विद्यानिधि के सत्संग में बैठते थे और इनकी कृष्ण भक्ति में बहुत आकृष्ट हो जाते। और ये दोनों भाई हैं, ये एक बार बताए किसको, गदाधर को, कि गदाधर उनकी मित्र थे। और ये जो गदाधर पंडित हैं ये पहले से बहुत विरक्त थे, है ना, भोग की प्रति संसार की प्रति कोई उनकी आसक्ति नहीं थी। तो एक बार मुकुंद और वासुदेव कहे कि मित्रा चलो तुमको आज हमें का एक विशेष वैष्णव को दर्शन कराएंगे। तो उस समय पुंडरी की विद्यानिधि ये चांदगांव छोड़कर की नवदीप में गंगा तट पर एक कुटिया बना करके रहा करते थे और प्रतिदिन, क्योंकि वो समझ गए थे कि अभी महाप्रभु अपने जो मूल भाव है जो राधा भाव को अभी प्रकट कर रहे हैं और सबको प्रेमदान कर रहे हैं। तो उस समय गदाधर बहुत छोटे थे, तो गदाधर को साथ में लेकर की मुकुंद और वासुदेव उस गंगा तट पर गए। तो उस समय पुंडरी की विद्यानिधि अपने कुटिया में नहीं थे, तो कहां पर, अपने पूर्वज की जो घर था जमींदार घर, तो वहां थे। तो वहां महल में जैसे हम देखते ना बड़े घर में सब रहता है सोफा, है ना, बहुत अच्छा सब सजावट होता है, है ना, कि अतिथि आकर के प्रसन्न हो जाए। लेकिन जो विरक्त वैष्णव है उनको उस प्रकार ऐश्वर्य से कोई आकर्षण नहीं होता है, बल्कि वो सोचते हैं कब मतलब इस घर छोड़ के हम जाए। तब जब मुकुंद और वासुदेव गदाधर को लेके गए तो पुंडर की विद्या निधि एक अच्छे सिंहासन पर बैठे हुए थे और पान चबा रहे थे और एक फिगदानी था वहां वो फेंक रहे थे और उस हाइट में दो सेवक पंखा झल रहे थे जैसे हम प्रभुपाद के झल रहे हैं ना। तो जो विरक्त होते देखो हाँ ये भोगी है कि ये बैरागी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुजाई हैं हाँ उनकी पहचान किससे होता है, चैतन्य रस संगी गणे हाँ महाप्रभु रस संगी जत वैराग्य प्रधान, उनकी प्रधानता किसमें है वैराग्य। तो गदाधर सोचे इनका अंदर तो कोई वैराग्य है नहीं, पान चुबा रहे हैं, मट्ठा सलके पहना हुआ है और सिंहासन पर बैठा हुआ है, पिक दानी में थूक फेंक रहा है, सेवक उनकी चामन डोला रहे हैं, ये भोगी है ना ये वैष्णव है, मन मन में इसे सोचने लगे। परंतु उनकी मन भाव को मुकुंदर ने ढाल ली, समझ ली कि इनकी मन में क्या रेल चल रहा है। कह रहे हैं हम तो एक अच्छा वैष्णव दर्शन कराने के लिए आए थे, लेकिन इनकी वो वैष्णव के प्रति किस प्रकार विचार, मलिन विचार आ गया, दोष बुद्धि आ गया। तो मुकुंद ने सोचा बड़ा अपराध है, हालांकि कलयुग में जो मन से और वाणी से जो अपराध होता है इतना प्रभाव नहीं डालता है, परंतु ये मत सोचिए कि हम भक्ति करते हुए इसको कंटिन्यू रखें, ये भी कभी कभी बहुत बड़ा अवरोध क्रिएट करता है ना, ऑब्स्टेकल। तो मुकुंद ने सोचे कि ऐसे वैष्णव के प्रति हाँ इस प्रकार कुबुद्धि पक्व विचार जो है उनकी सारे भक्ति को सारे विरक्ति को नष्ट कर दे, इसलिए मुकुंद इनकी गदाधर के उद्धार करने के लिए तुरंत क्या किए, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को उच्चारण किए। तो मुकुंद दत्त भागवतम के श्लोक को उच्चारण करने में बहुत पटु थे और अलग अलग राग में वो भागवतम के श्लोक को गाते थे, और वास्तव में ये जो श्रीमद भागवतम का जो है ना हम कहते उत्तम श्लोक को गुणानुवाद, सिर्फ आप इस श्लोकों को उच्चारण कीजिए तो भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी गुण है, खास करके भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम माधुरी है लीला माधुरी है, तो श्लोकों को उच्चारण करने से स्फूर्ति होता है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीवास पंडित जैसे महान वो सिर्फ श्लोकों सुनकर के उनके अंदर भाव पैसा है। तो ये पुंडरिक विद्यानिधि ये जो भागवतम के श्लोकों को श्रवण किए, ये कौन से श्लोक था, ओहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघंसया प्राय जद्याप्यस्वाधवी लेभे गतिं धात्रिचितं ततोन्यं कंबातयालं शरणं व्रजेम। इस श्लोक सुनते ही धड़ाम से वो अपने उच्च सिंहासन पर जो बैठे थे तुरंत गिर पड़े, मूर्छित हो गए। कृष्ण मुकुंद मुरारी ऐसे नाम को जोर जोर से उच्चारण करते हुए पछाड़ खाने लगे, बार बार गिर पड़ते थे, आंख से आंसुओं के धारा बहने लगा, सब आश्चर्य थे ये क्या हो रहा है, और गदाधर के शरीर कांपने लगा, अरे ऐसे वैष्णव क्या भाव है, और ऐसे वैष्णव के प्रति मेरा कैसे कुबुद्धि हो गया, एक तो भय से और इनकी भाव देख करके उनके हृदय में इस तरह दो प्रकार के भाव उत्पन्न हो, आश्चर्य और भय। परंतु क्या समाधान है, गदाधर मन मन से विचार करने लगे ऐसे वैष्णव की प्रति जो मेरी कुबुद्धि है कुभावना है हाँ ये मेरी भक्ति को ऑलरेडी नष्ट कर दिया, अभी सुधारने के एकमात्र उपाय है क्या, कि जिनके पास अपराध होता है उनको गुरु रूप में स्वीकार कर ले। मां बाप के पास बच्चा अपराध कर सकता है और मां बाप इसको दंड देकर के सुधार कर सकते हैं। इसलिए गुरु के पास यदि हम अपराध करते हैं तो गुरु हमको क्या करते हैं, हाँ फिर सुधार करते हैं, क्यों जानते हैं मेरी शिष्य है। परंतु अन्य वैष्णव के स्थान में अपराध करने से क्या है, वो अपराध तुरंत आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु के पास हम अपराध करके फिर हम भक्ति कर सकते, तुरंत फिर सरेंडर करना चाहिए, है ना, फिर गुरु हमारे सुधार करते। हरि स्थाने अपराधे हरे हरे नाम, तोमर स्थाने अपराधे नाही के एड़ा। तो इसी प्रकार जो गदाधर हैं तो सोचे कि मैं इनसे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा, गुरु मंत्र उनसे ही स्वीकार करूंगा। तो मन मन से विचार करने लगे और फिर गदाधर की मनोभाव को मुकुंद समझ करके तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास निवेदन किए। जब वो बाह्य दशा में आए तो कहे कि ये हैं गदाधर और उनकी बाल्यावस्था बहुत विरक्ति से बिता हुआ है, तो कृपा करके आप उनको शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि कहे ठीक है, परंतु दीक्षा नहीं दिए। फिर जाकर के गदाधर चैतन्य महाप्रभु के साथ विचार विमर्श किए। देखिए गुरु चयन करने का यही है उपाय कि हम अपने मन से है ना विचार कर लें और फिर किसी के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जो हमारी गुरु हैं या गुरुजन हमको गाइड करते हैं तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ विचार करके उनके सलाह से फिर पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा प्राप्त की। और पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, साक्षात वृषभानु है और उनकी पत्नी कीर्तिदा, और गदाधर कौन है, राधारानी। तो स्वाभाविक है और गदाधर पंडित जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलांचल आ गए तो गदाधर तो बहुत विरक्त थे, तो वो भी महाप्रभु के साथ रहने लगे। तो एक दिन गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किए कि प्रभु आज मेरे गुरु मंत्र स्फूर्ति नहीं हो रहा है, स्मरण नहीं आ रहा है, शायद इस मंत्र को मैं किसी के पास बोल दिया, तो क्या मैं आपसे ही मंत्र को फिर ले सकता हूं, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, सारे मंत्र विशारद हैं, तो आप कृपा करके मुझे उस मंत्र दीजिए। महाप्रभु कहे गदाधर ये व्यभिचार मत करो, भक्ति में व्यभिचार नहीं होता है। एक बार किसी गुरु प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर के फिर दूसरे बार किसी वैष्णव सेवा गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये व्यभिचार है। पर भगवान गीता में कहते हैं मांच जो व्यभिचारेण भक्ति जोगे न सेवते सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर वो तीन गुण को अतिक्रमण कर जाता है, रज सत्व और तम गुण, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। परंतु जो भक्ति में व्यभिचार करता है उसकी परिणाम क्या होता है, गुण की बंधन से निकल नहीं पाएगा, उसको पुनर्बार उस मंत्र गुरु के पास फिर आना पड़ेगा, तब फिर उसको कल्याण होगा। जैसे रघुनाथ भट्ट है ना, उनसे दीक्षा लेते कौन ही हरिवंश, उनका भी उद्धार नहीं हुआ, फिर आपस आना पड़ा। तो महाप्रभु सिखाए है ना, आपने आचरी भक्ति जीवर सिखा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे, हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत अच्छा है ना, आज है ना जैसे लालची गुरु क्या होता है, दोनों नरक के ठेलान ठेलान लोभी चेलान लालची गुरु। तो गुरु यदि सोचे ना मेरा ये धनी शिष्य है, और बहुत ज्ञानी शिष्य हैं, तो मैं उनको दीक्षा दे दूं थोड़ा, तो परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। हमको शास्त्रीय सिद्धांत को अनुसरण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, गदाधर तुम्हारे गुरु कुछ दिन के बाद यहां आकर तुमको मंत्र देंगे, तुम प्रतिज्ञा करो। हाँ, तो पुंडरीक विद्यानिधि, उनके एक स्वभाव था, वो इतनी विरक्त थे और भगवान के तदीय वस्तु के प्रति इतनी अनुरक्त थे, तो गंगा माता को दर्शन करने के लिए दिन में नहीं निकलते थे। फिर यार ये कैसे अनुरक्त भक्त हैं? तो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि गंगा जल में लोग कुल्ला करते हैं, पैर धोते हैं, तो उनको बहुत दुख होता, इसलिए रात्रि के समय जाकर के गंगा माता को प्रणाम करके आते हैं। कभी पुंडर की विद्यानिधि पैर नहीं रखे गंगा जल में, सिर और हाथ, इतनी सभ्य भाव था। तो वही पुंडर की विद्यानिधि नवदीप से नीलांचलपुरी आए। तो नीलांचलपुरी जब आए तो चैतन्य महाप्रभु का कहता था, अभी तुम अपने गुरु से इष्ट मंत्र फिर ले सकते हैं। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि नीलांचल में पहुंचते ही उनको एक बहुत अफुर्ती आनंद प्राप्त हुआ। अरे ये तो बहुत सुंदर क्षेत्र है नीलांचल क्षेत्र। तो कुछ दिन वो वहां रहने लगे और प्रतिदिन उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो ओढ़नी षष्ठी के दिन जब देखे कि जगन्नाथ की पुजारी जगन्नाथ जी को कौन से वस्त्र पहना रहे हैं, मंड दिया वस्त्र, तो बहुत उनको दुख लगा कि इन लोग को क्या पता नहीं है कि डीटी वर्शिप का जो विधि विधान है पूजा का, ये तो वो पंडे हैं, जगन्नाथ के नित्य सेवक हैं, इनको पता नहीं। मन में उनको बहुत थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि इन सेवकों को कुछ समझाना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा ठीक से नहीं कर रहे हैं, ऐसे मन मन में सोच करके आए, लेकिन किसको बताए नहीं। तो स्वर्ग दामदर जो चैतन्य महाप्रभु की अढ़ाई पार्षद में मुख्य हैं, तो उनके साथ उनकी बहुत घनिष्ठता थी, घनिष्ठ मित्र, दोनों एक साथ जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते, फिर आपस आते हैं। लेकिन स्वर्ग दामदर रहते थे चैतन्य महाप्रभु के पास और पुंडरीक विद्यानिधि रहते थे कहां, ये जो दक्षिण दरवाजा है कौन सा, परमानंदपुरी की कुएं के पास, वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि रहते थे। और स्वरूप दामदर आकर की पुंडर की विद्यानिधि के साथ फ्री प्रातः काल प्रतिदिन मंगला आरती दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जब स्वरूप दामदर अगले दिन आए तो देखे, अरे पुंडरी की विद्यानिधि का दरवाजा बंद है, शायद क्या अब तक सोया है क्या। तो आकर की खटखटाए दरवाजा, अरे महाराज जगो जगो, अभी मंगला आरती जाना है, अभी सोए है क्या। तो पुंडरी की विद्यानिधि अपने मुंह में कपड़ा डाल करके आता है और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हरे कृष्ण। तो स्वर्ग दामदर पूछे, क्या हो गया, कुछ बुखार हो गया क्या, कल रात में कपड़ा ढके हैं। तो पुंडरी की विद्यानिधि कहे, मित्र आओ ना बैठिए थोड़ा। तो बैठ के स्वर्ग दामदर तो कपड़ा खोल दी, तो स्वरूप दाम देखा, ये क्या हो गया, कुछ एलर्जी हो गया क्या, होता है ना कुछ शरीर में है ना सूजन जैसे आ जाता है। तो देखे दो गाल में सूजन है, क्या हो गया, कुछ खा पी लिए थे क्या उल्टा सीधा। तो कहते नहीं, कल एक अद्भुत घटना हुआ रात में, क्या हुआ, हमें सोया था इसे दो लड़के आए और कहे, अरे उठ, और हमको उठाए, मैं बैठ गया और कह रहे देखो मेरे सेवक मुझे जैसे चाहे मेरी सेवा वो कर रहे, तुम यहां के मेहमान हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम मेरे सेवक की क्यों निंदा की। और कहते हुए एक चुपत मारे, ओ और नहीं, दूसरा भी जो लड़का था वो भी ऐसे कहा और फिर दूसरे गाल पर मार, और ऐसे दोनों भाई मारते गए। मैं कहा मैं मर गया, मर क्या बचा, हाथ जोड़ते रहे तब फिर ये दो भाई छोड़े, तब सर्वतान दरबार से दोनों भाई कौन थे? कहते एक गोरा एक सांवला, और मुझे लगता है कि यही थे। तो स्वरूप नामदर बहुत ठट्ठा करके हंसते लगे, बहुत अच्छा हुआ मजा मिल गया ना, और तुम कितनी बड़े सौभाग्यवान हैं, देखो साक्षात भगवान की स्पर्श प्राप्त की। पुंडरिक रोने लगे, अरे मैं जैसे वैष्णव का अपराध किया हूं ना, मुझे नरक जाना था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचा लिया। तो इसी प्रकार और एक वैष्णव के हैं, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, मैं संक्षेप में बता देता हूं 5-10 मिनट में। जो जो रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनको हम कहते हैं रस मंजरी, भगवान श्री कृष्ण की लीला में रति मंजरी बा भानुमती, तो इनकी जो जन्म हुआ था सप्तगांव। ये सप्तगांव कहां पर है आप लोग जानते हैं? हम गए थे चुड़ादरी फेस्टिवल जहां होता है, कहां? हाँ, पानीहाटी। हाँ, पानीहाटी के पास है ये सप्तगांव। तो ये सप्तगांव में दोनों धनी व्यक्ति हैं, दो भाई, उनके नाम था क्या? हिरण्य और गोवर्धन। तो उस समय उनकी महीना की कमाई कितना था? 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। अभी शायद किसी का होना 20 लाख स्वर्ण मुद्रा, उसी हिसाब से आप देखो अभी के हिसाब से कितना हो सकता है, विचार करो। 500 साल पहले 20 लाख स्वर्ण मुद्रा कमा देते, अभी कितना होगा? 20 करोड़। हाँ, ज्यादा भी हो सकता है ना। और वो स्वर्ण मुद्रा, ये पेपर करेंसी नहीं, इतनी कमाई था। लेकिन उनकी जो बड़े भाई है हिरण्य, हाँ, तो उनकी कोई पुत्र नहीं थे, और दूसरा जो भाई गोवर्धन, उनकी अकेले पुत्र है कौन? रघुनाथ। और ये रघुनाथ हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त किए थे। कैसे? जब हरिदास ठाकुर आए थे सप्तग्राम, आप कथा सब सुने होंगे हरिदास ठाकुर के तिरुभाग में, तो एक ऐसे विद्वान था जिन्होंने हरि नाम के ऊपर डिबेट किया, और उन्होंने कहा कि यदि नामाभास में जिनको उद्धार हो जाता है तो प्रमाण दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर जिसके घर में रुके थे वो कौन था? बलराम आचार्य। ये बलराम आचार्य ये हिरण्य और गोवर्धन के घर में आकर की चैतन्य महाप्रभु और उनकी पार्षद के बारे में बताते हैं। और ये दोनों भाई बहुत उदार थे, ब्राह्मण वैष्णव विद्यार्थी दुखी गरीब सबको कुछ ना कुछ दान करते थे। अच्छा देखो, जिसको इसे जो पुण्य है ना, दान करने की प्रवृत्ति है जो धनी है, तो इसी प्रकार उनको हरि भक्ति भी प्राप्त होता है। खास करके पात्रता में दान करना चाहिए, ब्राह्मण वैष्णव विद्यार्थी विधवा है ना, बहुत सारी हैं बालक। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु है ना, इन दोनों भाइयों के ऊपर कृपा हरिदास ठाकुर के द्वारा करवाए थे। उस समय वो जो था, जो पाखंडी था, वो ब्राह्मण कौन था जिन्होंने चैलेंज किया था? गोपाल चपल है ना, उसका नाक तो गल गया कुष्ठ रोग। तो उस समय ये जो रघुनंदन है ना, रघुनाथ, ये बहुत छोटे थे, और हरिदास ठाकुर उनको आशीर्वाद दिए कि चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो। और चैतन्य महाप्रभु का जब गुणगान करते थे तो ये रघुनाथ ध्यान पूर्वक सुनते। तो इसी प्रकार है ना, एक महान वैष्णव से श्रवण करने से अपने आप प्रेम की वृद्धि होता है। तो रघुनाथ दास की प्रारंभ ही बाल्य काल में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुरक्ति बढ़ गई। और जब बड़े होने लगे तो उनको ये संदेश मिला कि अभी चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले लिए हैं और सन्यास लेकर के घर छोड़ दिए हैं। तो रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किए, घर छोड़ने के निश्चित किए। लेकिन उनकी पिता माता मना की, अकेला बेटा है कैसे जाओगे, कहीं नहीं जाना। परंतु जब उनको 3 दिन के बाद पता चला कि चैतन्य महाप्रभु कहां पर आए हैं, शांतिपुर, तो ये संदेश सुनकर के उनको भी शांति मिला और जाकर के पिताजी को बहुत रिक्वेस्ट की और सेवक के साथ जो हिरण्य और गोवर्धन ये दोनों की एकमात्र जो पुत्र है रघुनाथ दास, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सेवक भेजे और उन्होंने जाकर के चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। सची माता भी आई थी। तो अद्वैत आचार्य ये जो हिरण्य और गोवर्धन को जानते थे और चैतन्य महाप्रभु साहब उनको परिचय कराए और चैतन्य महाप्रभु क्या किए, रघुनाथ के सर पर अपने शरण कमल रखे। उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य कुछ दिन उनको घर में रखे, फिर वापस आते हैं। फिर दूसरी बार है ना घर में उनको मन नहीं लगता है तो पिता माता सोचने लगे ये बेटा पागल हो गया है, अरे पढ़ाई लिखाई ना करे लेकिन घर में तो रहे। तो सोचे देखो ये बच्चे है ना, जब कुछ काम दाम नहीं करते हैं, घर में मन नहीं लगता है, तो यदि पत्नी आ जाए ना तो सारे काम करेगा। तो ये सोच करके उनको शादी करवा दी और एक कुलीन घर की लड़की से, देखने में बहुत सुंदरी थी। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी उनके इसलिए गोस्वामी कहा जाते, तो विवाह करने की बात वो अपने पत्नी के साथ रहने नहीं लगे, उनको लगा कि ये काल सर्फ है। तो फिर ये सोचा कि इनका दिमाग खराब हो गया है ना, सब लोग सोचे। फिर भी शादी किया है, पत्नी के साथ रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, लेकिन ये लड़का भागता है इधर उधर। तो सारे पहरेदार को बोल दिए कड़ा नजर रखो, कड़न बना दे, है ना। तो फिर क्या होता है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां रहते रहते बहुत दुखी हो गए। फिर वो दूसरी बार फिर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए शांतिपुर जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से नहीं जगन्नाथपुरी से सॉरी वृंदावन से आते हैं शांतिपुर, तो दूसरी बार जाते हैं सेवक के साथ। पिता से रिक्वेस्ट करते हैं, देखो यदि मुझे आप रखोगे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर जो हिरण्य और गोवर्धन चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनते थे कि देखो ये जो रूप सनातन बड़े बड़े मंत्री थे और प्रताप रुद्र ये भी मिनिस्टर था, सार्वभौम भट्टाचार्य ये बड़ा विद्वान था, ये सब ने विरक्त जीवन ले लिए, तो मुझे लगता है कि ये जो चैतन्य है ये साक्षात भगवान है, उनको पूरा विश्वास हो गया और अपने पुत्र को आदेश दे दिए, अनुमति दे दी कि जाओ दर्शन करके आओ, लेकिन सेवक के साथ, और कुछ उपहार भी दी और ये भी सोचे कि प्रभु मेरी भी इच्छा भी जानते हैं कि मेरे बेटे को ना गृहस्थ धर्म निभाने के लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद देंगे और मेरे बेटा घर में रहेगा, इसलिए बहुत सारी अलंकार वस्त्र घी मिठाई फूल माला सब दे करके बेटा को और सेवक को भेज दिया। तो जब वो पहुंचे तो महाप्रभु क्या बोले, मरकट वैराग्य ना भैया लोग दिखाया, महाप्रभु उनको कृपा तो दिए। लेकिन जब रघुनाथ दास सोचे कि महाप्रभु को छोड़कर कि मैं जब फिर वापस घर जाना है जो मेरे लिए एक जेल खाना है, तो महाप्रभु उनको ये शिक्षा दी, अरे भाई ऐसे मरकट वैराग्य मत हो, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। तो फिर वो कहते हैं कि परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखो, और मैं जब वृंदावन से लौट करके आऊंगा ना तीसरी बार तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो महाप्रभु आश्वस्त किए, इसलिए रघुनाथ जब आपस गए पूरा कॉन्फिडेंट होकर के, तो पिता माता सबके साथ अच्छा व्यवहार किए, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार किए। देखिए सचमुच जो वैरागी है ना ऐसे डीलिंग सीखना चाहिए, फीलिंग के अनुसार डीलिंग होता है, ऐसा नहीं कि लापरवाही करे पत्नी के साथ बच्चों के साथ, कहते हैं तब इसे झूठा वैराग्य है। चैतन्य महाप्रभु जो वैराग्य सिखाए है वो वास्तविक भक्ति युक्त वैराग्य। बाह्य लोक व्यवहार अंतरे निष्ठा। तो इस बार पिता माता बहुत खुश हो गए, आह महाप्रभु बड़ी कृपा की मेरी बेटी की, है ना। पत्नी डर रही थी, अभी उनके साथ मधुर भाषण करने लगे तो सब कुछ अच्छा हुआ। परंतु ये जो रघुनाथ दास वो सोच रहे थे मैं कफ निकल के जाऊं, कफ निकल के जाऊं। तो एक बार जो मुसलमान क्या बोलते हैं इसको, माफिया ना, जो ये मुसलमान भाषा में क्या बोलते हैं इसको, जो राजा की असिस्टेंट होता है, काजी की, नहीं काजी नहीं उसको और वजीर, वजीर हाँ, वो जाकर की कंप्लेन किया, देखो ये दो भाई है ना बहुत क्या करते हैं, कमाई करते हैं लेकिन आपको बहुत कम देते हैं, मतलब वो करप्शन करते हैं शासन कमाई में भी। तो ये जो मुसलमान काजी था वो बजरी की बात सुनकर ही कहा कि इसको बंदी बनाओ, परंतु ये दो भाई बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए थे कि ये कंप्लेन का ही परिणाम होगा, हम लोग जेल में चल जाए। ये दो भाई भाग गए घर से, छिप गए, और बंदी किसको बना गया, रघुनाथ। कहा कि देखो ये दोनों भाइयों का प्रीति इनके साथ है, और हम जब इसको बंदी बनाएंगे इनको छुड़ाने के लिए अवश्य ही ये दोनों भाई आएंगे। तो फिर जब जेल में रखे और कहे कि इसको मारपीट करने से ना वो बता देगा, उसको होश आ जाएगा, है ना, अपने पिता कहां छुपे हैं बता दे। तो ये सोचकर के उनको बहुत पिटाई की। सोचिए भक्त है ना, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए कितना कठिनाई को सहन कर लेता है, और इसलिए कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसुमिख्यमान, कितनी कठिनाई को। और रघुनाथ गोस्वामी ये कठिनाई को इसलिए सहन करके कि ये सोचे महाप्रभु की कृपा हो रहा है, और मुझे ही बहुत ही संसार के अंधकोण से मुझे निकालने वाले, कि जिस किसी प्रकार जीवन की दुर्दशा आ जाती है समझना चाहिए, जो भक्ति करते हुए ऐसे दशा आ जाती है तो सोचना चाहिए कि संसार बंधन उनकी कटने वाला है और महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने वाली। परंतु रघुनाथ के अंदर ये भी एक भावना हुआ कि मुझे तो यहां से छुटकर के महाप्रभु के चरण के आश्रय लेना चाहिए, जेल में रहकर क्या करना, और महाप्रभु की कृपा से उनकी वाणी पर ऐसे सरस्वती विराजमान हो गई और वो कहने लगे देखिए आप जो राजा के पास काजी के पास जाकर कहा कि देखो मेरे जैसे दोनों पिताजी हैं और आप भी मेरी पिताजी के समान हैं, और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत घनिष्ठता है, और कभी कभी भाई भाइयों के बीच में कभी झगड़ा होता है फिर मित्रता होती है, और आप जैसे मेरी पिताजी के लिए, मेरी पिताजी जैसे पूज्य हैं आप भी मेरे लिए पूज्य हैं। तो इस प्रकार जो मधुर भाषण किए तो शुद्ध भक्त की शब्द से ऐसे ही प्रभाव है, बड़े बड़े दुष्ट जैसे कंस जैसे बेईमान व्यक्ति को वसुदेव ने मन को फिरा दिया। भोजानम जसस्तर, तुम भोज वंश में सबसे श्रेष्ठ सम्मानीय व्यक्ति है। बस दुष्ट व्यक्ति को थोड़ा से मीठी वचन बोल दो तो उनका मन फिर जाता है, बदल जाता है। ये सुनकर खुश हो गया और रघुनाथ की जो चेहरा था उसको देखकर वो द्रवीभूत हो गया और उनको पिता कह दिया, तो इसे वो गोमांस खाने वाला वो काजी उनका हृदय पिघल गया और रोने लगा और कहा कि बेटा तुम घर जाओ और जाकर के ना तुम्हारे पिताजी को तो मैं मुक्त कर दिया, चलो तुम लेकिन जो थोड़ा ज्यादा कमाई करके रखे ना कुछ हिस्सा मुझे दे दे, है ना, ईमानदारी से जो बने दे देना। तो रघुनाथ जाकर की ये सूचना दे दिए और जो उनके जो पिताजी छिपे थे आ गए और ये जो पैसा देने के लिए कहा था वो पिताजी से कह करके पैसा भी दे दिए। और बेटा का ऐसे कार्यों को सुनकर कि ये दोनों बाप हैरान हो गए, कैसे हैं देखो बेटा की अद्भुत बुद्धि है, हम दोनों को ऐसे ही बंधन से निकाल दी। और कोई कि ये है ना चैतन्य देव की बड़ी कृपा हुई है, मेरे बेटे को घर संसार में बांधने के लिए रखने के लिए बड़ी कृपा की है। तो खुश हो गए, थोड़ा थोड़ा ढीला कर दिए है ना सिपाही को, सिक्योरिटी को। तो फिर लंबा कथा है ना, फिर इस बार जाते हैं कहां चूड़ादही फेस्टिवल होता है, चैतन्य नित्यानंद प्रभु के अभिषेक होने के लिए राघव पंडित ने बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया है और रघुनाथ पिताजी से निवेदन करता है कि मुझे भी उत्सव में भाग लेने की अनुमति दीजिए। तो दोनों पिता कहा हाँ हाँ जाओ जाओ है ना, बहुत अच्छा है आप तो बदल गए हैं है ना, अभी हिसाब में आ गए हैं। तो फिर ये जाकर देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और रघुनाथ देखकर के बहुत आश्चर्यचकित हो गया, इतने बड़े सुंदर मंडप है जो कहा है जो चूड़ादही फेस्टिवल होता है पानीहाटी, अभी भी वो बटवृक्ष है। तो वहां जब प्रणाम करते हैं तो सारे वैष्णव कहते हैं कि देखिए प्रभु ये है रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु उठ कर जाते हैं, अरे चोर तुम कितना दिन छिप करके रहोगे। और जाकर के नित्यानंद प्रभु जब प्रणाम कर रहे थे रघुनाथ दास तो उस समय उनके चरण दिए और उनको आलिंगन किए से उनको भक्ति प्राप्त हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम जो चोरी किए है ना वो चोरी क्या है कि चैतन्य मेरी धन है, तुम मेरी बिना अनुमति से उस धन को लुटने के लिए दो दो बार प्रयास किए अभी नहीं। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहे कि तुम जो अपराध किए ना इसलिए मेरे पार्षद को क्या खिलाओ, चुड़ा दही। तो चुड़ा दही फेस्टिवल की जय, तो मैं तक अपेक्षा करना है। तो फिर चुड़ा दही फेस्टिवल में ना तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, चुड़ा खिलाए और रघुनाथ इस दृश्य को देखे रोते रहे और नित्यानंद प्रभु अपना उच्चिष्ट को रघुनाथ को दिए और कहे कि आज से तुम्हारा संसार बंधन कट गया। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं अब निश्चिंत होकर के, लेकिन अभी घर नहीं जा रहे हैं, दुर्गा मंडप तक बैठते। तो माता ने सोचा उनको अभी घर में हाथ में हाथ कड़ी डाल करके रख दो, नहीं तो ये भाग जाएगा कहां। पत्नी बिचारी क्या करेगी, 2 साल हुआ है अभी बेटा भी नहीं हुआ है कुछ है ना। तो हिरण्य और गोवर्धन ने समझाया कि जिनको अप्सरा जैसे स्त्री इंद्र जैसे ऐश्वर्य बांध नहीं सका उनके लोहा के चैन कैसे बांध सकता है। फिर वो दुर्गा मंडप पर उन्होंने बहुत पहरादार लगा दिए, कड़ा पहरा देते रहे सब। तो फिर एक दिन ये जो बलराम आचार्य हैं तो ये और आदित्य आचार्य के जो पार्षद है सब सूचना देते थे कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए अभी किधर पहुंचे, तो सब सूचना मिलता कि अभी उनको ये सूचना मिल गया कि अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मिलने के लिए बड़ा आतुर हुए और वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो दैववास उस दिन रात को ये जो बलराम आचार्य हैं, नहीं सॉरी जदुनंदन आचार्य जो उनकी कुल गुरु हैं, उनसे मंत्र दीक्षा लिए थे। तो उनकी जो घर की जो टीटी है उसको पूजा करने का जो पुजारी था वो छोड़ के चल गया है। तो रात में आकर कहे रघु तुम जाओ उस पुजारी को बोलो तुम्हारे बोलने पर वो आकर पूजा करेगा। तो रघुनाथ का हाँ यही एक अवसर है, लेकिन गुरु जी के कुछ नहीं बोले, कहते हाँ गुरु जी मैं जाऊंगा आपके साथ, मैं उनको बताऊंगा। लेकिन रास्ता में गुरु जी को कहा कि गुरु जी आप घर में घर जाइए ना और मैं जाकर के उनको बोल दूंगा। देखिए प्लान कैसे करना चाहिए है। और जाकर की वो तो पुजारी के पास नहीं गए, चुपचाप जंगल के रास्ता में निकल गए और उन्होंने 15 कोस भूखा चलते हैं हाँ अंधकार की रात्रि, और पहुंचते हैं कि ग्वाल के घर, उनको दूध पिलाए हाँ कुछ चूड़ा दिए और वही साथ में लेकर के चले जगन्नाथपुरी। हाँ 13 दिन में पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, और दिन में ना सॉरी 13 दिन में सिर्फ कितने बार खाए हैं जो चूड़ा लिए थे, एक बार पाए रास्ता में और एक बार पानी पिए, फिर चैतन्य महाप्रभु दर्शन प्राप्त करते हैं जगन्नाथपुरी में। और चैतन्य महाप्रभु इस रघुनाथ को किसको सौंप दिए, स्वरूप को, उसी दिन से उनका नाम हुआ स्वरूप रघु। इसी प्रकार आज उनकी प्राकट्य दिन है और लंबी कथा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलन होने के बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसाद पाए, आप लोग भी अभी प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अभिभाव महामहोत्सव की जय। श्री श्री पुंडरिक विद्यानिधि अभिभाव महामहोत्सव की जय।